हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। धृति की अभी आँख लगी ही थी कि एक तेज आवाज़ के साथ उसके रूम का दरवाज़ा खुला, जिससे धृति घबराकर चिहूँकते हुए उठकर बैठ गई। उसने हड़बड़ाहट में सामने देखा तो अर्णव अपनी गुस्से से खूनी रंग में रंगी लाल आँखों से उसे घूरते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसका लाल चेहरा, लड़खड़ाते कदम और झपकती पलके उसके नशे में होने की तरह इशारा कर रही थी। असल में अर्णव सोने के लिए लेटा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रह रहकर उसकी बंद पलकों के बीच वो दृश्य घूम रहा था जब वो नशेड़ी लड़के धृति की इज्जत लूटने के लिए उसके पीछे पड़े थे और अपनी अस्मत की रक्षा के लिए धृति बदहवास से भागे जा रही थी। उसकी बिखरी अवस्था, अस्त व्यस्त कपड़े, जख्मी पैर, भीगी आंखें उसके संघर्ष को दर्शा रही थी जो उसने किया था अपनी इज्जत लूटने से बचाने के लिए। जाने क्यों, पर आज के इंसिडेंट के बाद और धृति की हालत देखने के बाद एक बार फिर अर्णव का दिल जैसे चीख चीख कर कहने लगा था कि धृति की मासूमियत कोई छलावा नहीं। जो लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना संघर्ष करे, वो उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हो सकती जो अपने फायदे और स्वार्थ के लिए अपनी आबरू को नीलाम करे। उसकी आंसू भरी आंखें उसकी सच्चाई की गवाही दे रही थी, पर अर्णव की धृति के लिए नफरत उसे उस पर भरोसा नहीं करने दे रही थी। उसने अपने ही मन से ये सोच लिया कि आज जो हुआ वो सब नाटक इसलिए था क्योंकि वो लड़के धृति को कुछ नहीं दे सकते थे, और ये बात सोचते हुए उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो घर में बने बार में चला गया और जाने कितनी ही बोतलें अपने गले से नीचे उतारने के बाद वो चल पड़ा एक बार फिर धृति को अपने शब्दों से जलील करने और उसकी आत्मा को अपने इल्ज़ामों से छलनी करने। धृति नशे में घुत अर्णव को अपनी तरफ आते देखकर घबरा गई। उसे अर्णव में वो आवारा नशेड़ी लड़के नज़र आने लगे जो उसके बदन को नोचकर अपनी हवस मिटाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। धृति भय से खुद में सिमट गई और खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से ढकते हुए घबराई निगाहों से अर्णव को देखते हुए बोली, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? नशे में धुत अर्णव धृति का ये सवाल सुनकर उस पर भड़क उठा। ये मेरा कमरा है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ, तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? अर्णव का सवाल सुनकर धृति एक पल को खामोश रह गई, क्योंकि सच तो यही था कि ये घर, ये कमरा, ये बेड सब अर्णव का था। अर्णव के जैसे यहाँ की किसी चीज़ पर उसका कोई अधिकार नहीं था और न ही उसे अर्णव से सवाल जवाब करने का कोई हक था। धृति अपनी ही सोच में गुम थी, इतने में अर्णव उसके पास आकर बैठ गया और धृति के गालों पर अपनी उंगलियां टिकाकर उसके मुंह को दबाते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, पार्क में क्या कर रही थी तुम? धृति एकाएक चौंक उठ, चौंकते हुए अपने होश में लौटी और आंखें बड़ी बड़ी करके घबराई हुए से उसे देखने लगी। उसके कंठ से एक शब्द बाहर न निकल सका। जब अर्णव को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला तो उस पर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। परिणत धृति के गालों पर उसकी पकड़ कस गई, जिससे धृति को दर्द होने लगा। दर्द आंसू बनकर आंखों में उतर आया, पर धृति के दर्द की परवाह न करते हुए अर्णव ने बड़ी ही बेदर्दी से उसके मुंह को दबाते हुए, गुस्से से दांत पीसते हुए तेज आवाज में अपना सवाल दोहराया, सुना नहीं तुमने? सवाल किया है मैंने, जवाब दो मुझे कि इतनी रात गए अकेले उस सुनसान पार्क में क्या कर रही थी तुम? उसके यूं चिल्लाने से धृति कुछ डर गई और डबडबाई आंखों से रूंधे गले से बोली, मुझे अकेले रहना था इसलिए वहां रुकी थी। अकेले रहना था या अपने अकेलेपन का साथी ढूंढना था जो तुम्हारी जिस्म की जरूरत को पूरा करते हुए तुम्हारी तन्हाई को दूर कर सके, इसलिए घर आने की जगह उतनी रात को अकेले उस पार्क में बैठी हुई थी। धृति के मुंह को बेदर्दी से दबाते हुए अर्णव गुस्से से धधकती आंखों से उसे घूरने लगा। अर्णव का लगाया बेबुनियाद इल्ज़ाम सुनकर धृति की आंखों की पुतलियां अविश्वास से फैल गईं। उसको अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ पल तो वो स्तब्ध से उसे देखती रही, फिर दर्द भरी मुस्कान लबों पर सजाते हुए दृढ़ता से बोली, आपके मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनना कोई ताज्जुब की बात नहीं मेरे लिए। आपको तो मैं ऐसी ही लड़की लगती हूँ जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको मेरे बारे में जो भी सोचना है सोचते रहिए, मैं नहीं रोकूंगी आपको, और न ही अपनी सच्चाई और बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत या सफाई दूंगी, क्योंकि आपके लगाए इन बेबुनियाद इल्ज़ामों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं, इस बात से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या हूँ और कैसी हूँ ये मैं जानती हूँ, मेरे महादेव जानते हैं। और इसके अलावा दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या कहती, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं मेरे बारे में गलत सोचने के लिए। अब तक बिना किसी गुनाह के मुझे सज़ा ही देते आए हैं ना आप, तो आज भी ठहरा दीजिए मुझे गलत और सुना दीजिए मुझे सज़ा। पर कुछ भी कहने या करने से पहले इतना ज़रूर सोच लीजिएगा कि अगर अपने जिस्म की ज़रूरत किसी मर्द से ही पूरी करनी होती तो कल आपको खुद के करीब आने से रोकती नहीं। अगर यही सब करना था मुझे तो आज उन लड़कों से अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इतना संघर्ष न करती मैं। पर मैंने किया क्योंकि अपनी इज्जत पर मैं किसी प्रकार का कोई दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी तन्हाई की बात करते हैं आप, तन्हा तो मैं जाने कितने सालों से हूँ, पर आज तक मैंने कभी खुद को गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया, कभी किसी मर्द को खुद को छूने तक नहीं दिया। आपके अलावा कोई आदमी कभी मेरे इतने करीब नहीं गया था, और अगर आपने मुझे धमकी देकर मजबूर न किया होता तो मैं आपको भी खुद को छूने तक न देती। डैश डैश डैश, आपने ही अभी कहा था ना कि ये कमरा आपका है और मुझसे कोई सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे ही ये जिस्म मेरा है और आपको कोई अधिकार नहीं मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने का। धृति ने अपनी बात पूरी की। एक एक शब्द उसने पूरे विश्वास के साथ अर्णव की निगाहों से निगाहें मिलाते हुए कहा था। एक बार फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अर्णव को सच्चाई नजर आ रही थी, पर उसकी आंखों में बंधी नफरत और गुस्से की पट्टी उसे धृति की सच्चाई देखने नहीं दे रही थी। धृति ने अपनी बात पूरी की और पूरा जोर लगाकर अर्णव की हथेली को अपने मुंह पर से हटा दिया, पर अगले ही पल अर्णव ने उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए उसका सर हल्का ऊपर उठाते हुए उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। धृति के मुंह से हल्की सिसकी निकल गई, वो दर्द से छटपटा उठी और आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। अर्णव ने उसके चेहरे को अपने बेहद करीब कर लिया और नफ़रत भरी निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, तुम क्या हो और क्या नहीं मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मेरे सामने तो ये सती सावित्री बनने का नाटक मत ही करो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम किस तरह की लड़की हो। डैश डैश डैश, और अपने फ़ायदे के लिए कितना नीचे गिर सकती हो। एक बार फिर अर्णव के लगाए इल्ज़ाम सुनकर धृति अवाक से उसे देखती ही रह गई। अर्णव ने उसको गुस्से से जलती निगाहों से घूरते हुए दांत पीसते हुए आगे कहा,
इतनी ही प्योर और इनोसेंट लड़की हो तुम, तो मंगलसूत्र कहाँ है तुम्हारा और सिंदूर क्यों नहीं लगाया तुमने? शादीशुदा होकर कुवारी बनकर क्यों घूम रही हो? ताकि लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा सको, उन्हें ये दिखा सको कि अब तक अकेली हो तुम तो उनके साथ हो सकती हो। क्या जाहिर करना चाहती हो तुम ऐसे रहकर कि अब तक सिंगल हो और उनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार बैठी हो? पर अफसोस कि मैं किसी और इनोसेंट लड़के को तुम्हारे स्वार्थ की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। मैं अब तुम्हें किसी और लड़के को अपनी मासूमियत और खूबसूरती के जाल में फंसाने नहीं दूंगा। अब तुम्हें किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं। तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम्हें मेरे ही साथ रहना होगा। मेरी कैद से तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकोगी। इस सज़ा से तुम्हें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। बहुत आग लगी है ना तुम्हारे अंदर। तुम्हारे जिस्म को किसी मर्द की ज़रूरत है ताकि उससे अपनी चाहत पूरी कर सको। पर अफसोस कि मेरे रहते अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब से न मैं खुद कभी तुम्हें छूऊंगा और न ही किसी और को तुम्हारे करीब आने दूंगा। बहुत से दिलों को तोड़ा है तुमने। अब तुम खुद तड़पोगी तन्हा, ढूंढोगी किसी का साथ, पर तुम्हें हर बार तुम्हारे आसपास तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं दिखूंगा और मुझसे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द, नफरत, तकलीफ ही मिलेगी। अर्णव ने नफरत भरी निगाहों से उसे घूरा और गुस्से में धृति को खुद से दूर छटक दिया। धृति, जो उसकी बातों को सुनकर सदमे में जा चुकी थी, वो उसके अचानक धकेलने से संभल नहीं सकी और बेड पर जा गिरी। धृति बेड पर औंधे मुंह पड़ी सिसकने लगी, तभी उसके कानों में अर्णव की आवाज़ पड़ी, वैसा मैं तुमसे पूछना तो भूल ही गया, कैसा लगा तुम्हें अपनी प्यारी माँ से मिलकर? बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को उसके अपनों से दूर करने का। आज जब तुम्हारे अपने तुमसे नफरत करते हैं, तुमसे सभी रिश्ते तोड़कर तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं, तुम्हारा मनहूस चेहरा देखना तक नहीं चाहते, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? एहसास हो रहा है कि जब अपने परिवार के होते हम दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं, जब हमारे पास ऐसा कोई नहीं होता जिससे हम अपना दुख तकलीफ बांट सकें, तो कैसा लगता है? जो दर्द आज तक दूसरों को देती आई हो वो दर्द खुद सहकर कैसा लग रहा है तुम्हें? अर्णव की बातें सुनकर धृति सर घुमाकर डबडबाई अविश्वास भरी निगाहों से अर्णव को देखने लगी। उसके आंखों में मौजूद गुस्सा और चेहरे पर छाई कुटिलता भरी मुस्कान देखकर धृति समझ गई कि आज उसके साथ हुआ सब अर्णव ने ही करवाया है। धृति पहले तो बेबस और लाचार सी उसे आंसुओं से भीगी पलकें उठाए देखती रही, फिर अपने आंसुओं को बड़ी ही बेरहमी से अपनी हथेलियों से पोंछते हुए ठीक से बैठ गई और दर्द भरी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, आपने कभी उस इंसान को देखा है जिसकी आत्मा मर चुकी होती है पर फिर भी वो जिंदा होता है क्योंकि उसका जिस्म मौजूद होता है और उसकी सांसें चल रही होती हैं, पर जिस दिन उसकी वो अनचाही सांसें उसका साथ छोड़ देती हैं वो जिस्म भी पूरी तरह बेजान हो जाता है, पर इससे दुनिया को फर्क पड़ता है उस इंसान को नहीं। दुनिया वालों के लिए उस दिन वो इंसान मरता है, पर ये तो सिर्फ वही जानता था कि मर तो वो बरसों पहले गया था, उस दिन तो उसे जीवन के बोझ से मुक्ति मिली थी। कमिंग सून। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, मुझे फॉलो करें। कैसा लगा आपको आज का भाग बताइएगा जरूर, और अगर आप कभी ऐसे किसी इंसान से मिले हो तो समीक्षा में बताइएगा जरूर। बाकी धृति ने ये क्यों कहा ये जानने के लिए जरा इंतजार करिए और पढ़ते रहिए बेरहम इश्क।